कहानियों के वाचन का ब्लॉग कॉफी हाउस URL katha-path.blogspot.in।
राकेश बिहारी की लिखी कहानी किनारे से दूर। धूप की सुनहरी रोशनी खुले आसमान की नीली आभा से मिलकर रजत वर्णी होने का आभास दे रही थी। वो बार बार सामने के दृश्य को कैमरे में उतारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सूरज की तेज किरणें हर बार उसे नजरें नीचे करने को मजबूर कर रही थीं। सतीश डॉक्टर गुप्ता के साथ नाव वालों से तोल मोल करने में लगा था और लगभग 2 किलोमीटर पीछे छूट गए धुआंधार की खूबसूरती समर की आंखों में अब भी ताजा सी थी। बड़े बड़े शिलाखंडों से टकराती नर्मदा की तेज जलधारा और उस टकराहट से निकलते महीन फवारों के बड़े बड़े टुकड़े जैसे अभी अभी धुनी हुई रुई के फाहे वातावरण में तैर रहे हों, दूर से धुआं धुआं का सा एहसास देते हुए उसने सोचा, शायद इसलिए इसे धुआंधार कहते हैं। वही नर्मदा, लेकिन थोड़ी ही दूर पर उसका ये दूसरा रूप, जैसे जिंदगी के 2 अलग-अलग शेड्स। धुआंधार में लहरों की भीषण गर्जना तो भेड़ाघाट में ऊंची ऊंची संगमरमरी दीवारों के बीच शांति का ये तरल फैलाव दोनों ही समान रूप से आकर्षक और खूबसूरत। लेकिन चंद रुपए की खातिर एक बड़ी ऊंचाई से नर्मदा में छलांग लगाने वाले बच्चे वहां भी थे और यहां भी। वहां समर के लाख मना करने के बावजूद अपने आगे पीछे करते एक लड़के को छवि ने 50 रुपए का नोट पकड़ा ही दिया था। ये लो, ऊपर से कूदने के लिए नहीं, नहीं कूदने के लिए। वो लड़का तो रुपए लेकर दूसरी तरफ चला गया था, लेकिन उसके जैसे कई और लड़के छवि के आगे पीछे लग गए थे। पेट की आग को नर्मदा की धार में कूदकर बुझाने के इस विचित्र तरीके से उलझता और तेज चमकते सूरज से आंख मिचौली करता समर नर्मदा की खूबसूरती का ये कंट्रास्ट अपने कैमरे में उतार ही रहा था कि सतीश और डॉक्टर गुप्ता उस तक आ गए थे। हम इस बड़ी वाली शेयरिंग बोट में चलेंगे, समर ने सोचा। बड़ी बोट यानी और सवारियों का इंतजार। लेकिन घाट की ओर बढ़ते सैलानियों के एक और दल ने जैसे उसकी आशंका को परे धकेला था और उसने तुरंत ही पास खड़ी छवि की उंगली थाम अपने कदम नाव की तरफ बढ़ा लिए थे। अपनी मनपसंद जगह पर बैठते हुए उसने तेजी से चारों तरफ का मुआयना किया। ये सबसे अच्छी जगह है फोटो उतारने के लिए, और तेजी से उसके कैमरे का फ्लैश चमक पड़ा था। ऊपर चंदोवे की तरह टंगा नीला आकाश, नीचे हरी घास की तरह फैली नर्मदा और बीच में संगमरमर की ऊंचे ऊंचे पहाड़। नाव में बैठे अधिकतर लोग युगल थे, लेकिन अलग अलग वह के। जब तक आखिरी जोड़ा नाव में दाखिल हुआ, नाव लगभग भर चुकी थी और उन्हें अलग अलग बैठना पड़ा। दोनों नाविकों ने अपनी जगह ले ली थी। नर्मदा की शांत सतह को चप्पुओं ने जैसे ही हौले से हिलाया, नाव ने किनारा छोड़ दिया। हरी घास की तरह दिख रही नर्मदा अब काले नीले संगमरमर की छाया से मिलकर और गहरी और कचकच हो गई थी। समर के कैमरे से चमकते फ्लैश ने महसूस किया कि अब नाव खे रहे नाविक के चेहरे पर भी नर्मदा का वही गाढ़ा रंग चमकने लगा था, मानो उसने अपने चेहरे का वो कच्चा और नैसर्गिक सांवलापन घाट पर ही छोड़ दिया हो। अब देखो, साइड में नीले कलर का मार्बल, हल्का नीला, लाइट ब्लू। यहाँ से बोट वालों की कमेंट्री शुरू। नाव खे रहे नाविक की आवाज में एक नमकीन सी खनक थी, जो किसी कैमरे की पकड़ से भले ही दूर हो, लेकिन उसने अपने पहले ही वाक्य से नाव में बैठे यात्रियों के भीतर उत्सुकता और खुशी का एक मिला जुला संसार रचना शुरू कर दिया था। नाव में सबसे आखिर में सवार हुए जोड़े का पुरुष, जिसका रंग काले और नीले संगमरमर के बीच का था, ने दूर बैठे धुआंधार में उठ रहे रुई के फाहे जैसे रंग वाली अपनी बीवी की आंखों में देखते हुए नाविक की तरफ एक सवाल उछाल दिया। सिर्फ मार्बल के रंग ही बताते रहोगे या कुछ यहाँ की कहानियां भी सुनाओगे? साहब, बिना मार्बल के रंगों के यहाँ की सारी कहानियां फीकी हैं। आप धीरज तो धरो, अब तक चुप बैठे दूसरे नाविक ने जवाब दिया था। पहले वाले नाविक ने अपनी बात फिर शुरू कर दी थी। वो देखो, गोल्डन कलर का मार्बल, यही की फिल्म थी जलजला। कलाकार थे धर्मेंद्र डैनी और शत्रुघ्न सिन्हा, और वो रहा जंपिंग प्वाइंट। जलजला फिल्म का नाम आते ही डॉक्टर गुप्ता की निगाहें भाभी जी की ओर मुड़ी थी, जैसे वे उन्हें बीते दिनों की कोई बात याद करा रही हों। संगमरमर का रंग रुई के फाहे जैसे रंग वाली महिला की आंखों में भी चमका था। नाविक ने कुछ देर की चुप्पी के बाद अपनी बात पूरी की थी। जंपिंग प्वाइंट से हीरो हीरोइन नहीं कूदते, उनके पुतले गिराए जाते हैं, दूसरे नाविक की आवाज थी। यदि वो जंप लगाएंगे तो दोबारा फिल्मों में नजर ही नहीं आएंगे। दोनों नाविकों की सधी हुई जुगलबंदी के बीच नाव में एक जोरदार ठहाका गूंजा था। और तभी नदी में एक अतिरिक्त हलचल सी हुई थी। कोई शिशु मगरमच्छ शायद धूप की तलाश में पानी से पत्थर की तरफ बढ़ रहा था, जिसे सबसे पहले समर की 3 वर्षीय बिटिया ने देखा था और लगभग किलकते हुए वो चिल्लाई थी, मम्मा 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 वो देखो क्रोकोडाइल क्रोकोडाइल। शिशु मगरमच्छ के साथ ही जैसे नाव में बैठे सारे लोग अपने अपने हिस्से की धूप तलाशने लगे थे, मानो वो अचानक कहीं गुम हो गई हो। उनकी इस हरकत पर ऊपर टंगा धूप का चंदोवा मुस्कुरा उठा था। छवि ने धूप की वो मुस्कुराहट देख ली थी और उसके माथे पर चिंता की एक लकीर खिंच गई थी। पता नहीं उसकी गैर हाजिरी में काम वाली बाई पौधों को पानी देने आती भी है या नहीं, कहीं पौधे बिना पानी धूप में झुलस न जाएं। कौन जाने वो रोज ही आती हो, लेकिन बगल वाली भाभी उसे हमारे घर की चाबी ही नहीं देती हूँ किसी न किसी बहाने। नाविक की आवाज लगातार गूंज रही थी। वो हर कदम संगमरमर के एक नए रंग की बात कर रहा था। पता नहीं वो उसकी बातों का जादू था या कि संगमरमर के रंग का। नाव में सवार यात्रियों की आंखें उसकी बातों का लगातार अनुवाद करती जा रही थी बिना किसी देरी के। वो रहा गुलाबी कलर, पिंक मार्बल। यहीं पर बैठी थी रेखा। साड़ी का कलर था कच्चा, मार्बल था पक्का। इसे देखो कितना लग रहा है अच्छा, दूसरे नाविक ने जुगलबंदी आगे बढ़ाई थी। साड़ी मुंबई की थी ना, इसीलिए कलर चला गया। जबलपुर की होती तो साड़ी फट जाती, कलर नहीं जाता। नाव एक बार फिर ठहाकों से गूंज उठा था और इस ठहाके के सहारे गुलाबी संगमरमर के रंग की एक नाजुक सी डोर समर के सामने वाले युगल की आंखों में तैर गई थी। जीन्स और टी शर्ट पहनने के बावजूद उस लड़की के हाथों में अटका चूड़ा उसके नव विवाहित होने की चुगली कर रहा था। मार्बल और उस नव विवाहिता के हाथों के चूड़े की आभा टकराई थी हौले से, और इस टकराहट से उपजी चमक को नाविक ने जैसे आगे बढ़कर लपक लिया था। वो देखो पीछे, अमर प्रेम होटल, 1190 रुपए है ठहरने का टोटल और फ्री में मिलती है बोतल। क्षण भर की रहस्यमय चुप्पी के बाद उसने आगे कहा था, बोतल बिस्लेरी की। दूसरे नाविक ने बिना किसी रुकावट के बात आगे बढ़ाई थी। जिसकी नई नई शादी होती है बस इसे ही बुक कर लेता है और दूसरी बार धर्मशाला खोजता है। जोरदार ठहाकों के बीच डॉक्टर गुप्ता ने सोचा, भला वो बॉस का कि उसने परचेज कमेटी में उसे नॉमिनेट कर दिया और वो पत्नी के साथ समदड़िया होटल के एसी सूट में ठहरा है, वरना वो भी कहीं कोई धर्मशाला या ज्यादा से ज्यादा कोई किफायती लॉज खोज रहा होता। डॉक्टर गुप्ता जिंदगी में किफायत के तरफदार हैं। उनका बचपन अभावों में बीता है, पर पत्नी और बेटे हैं कि कल की शाम ही उनकी पत्नी पहले की ली हुई एक साड़ी बदलने के नाम पर बाजार गई थी और साथ में 2 नई साड़ियां लेती आईं। इसी बात पर दोनों में तनातनी बनी रही थी देर तक। नाविकों की इस रस भरी तुकबंदी के बीच वो नवविवाहित जोड़ा भी थोड़ा शर्मा गया था। उन्हें लगा जैसे नाव में गूंज रहे ठहाके संगमरमरी दीवारों से टकरा टकरा कर उन तक ही लौट रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपनी हया के होठों पर एक सम्मिलित सी हंसी रख दी थी अनायास। सूरज की तेज रोशनी और चप्पुओं के लगातार चलने से नाविक के बाहों की मछलियों का नमक पिघलने लगा था। उसके गाल, नाक और ठुड्डी से एक अनाम सी तरलता चुहचुहा उठी थी। समर के कैमरे ने देखा, नाविक की शुष्क मुट्ठियों पर दरार जैसी खिंची लकीरें और चितकबरे मार्बल की दीवारों पर बने आड़े तिरछे निशान लगभग एक जैसे दिख रहे थे। सफेद संगमरमर पर पड़े पानी के सूखे हुए दागों ने उसे एक तांबई रंगत दे दी थी। संगमरमर के पहाड़ की वो तांबई आभा उस वक्त दूसरे नाविक के चेहरे पर चमकी थी जब उसने पहले नाविक के हाथों से चप्पू अपने हाथों में थाम लिया था। दूसरा नाविक अब पहले नाविक की जगह पर बैठा मुख्य गायक था और पहला संगतकार। दोनों ने अपनी भूमिकाएं आपस में बदल ली थी। दोराहे नहीं, एक दो रुखे पर आकर नाविक ने चप्पुओं को ढीला छोड़ दिया था। हाँ तो साहब, इसे कहते हैं भूल भुलैया। आप बताओ अब जाना है किस साइड? रास्ता बताने वाले को मिलेगा बम्पर प्राइज। लेफ्ट नहीं नहीं राइट नहीं लेफ्ट। कई आवाजें एक ही साथ सही रास्ते का कयास लगाने लगी थी। अलग अलग बैठे दंपति के पुरुषों ने जोर देकर कहा था, राइट। मैंने तो लखनऊ की भूल भुलैया में भी रास्ता खोज लिया था, ये क्या है? मैं फिर कहता हूँ राइट। तभी नाविकों की तुकबंदी ने एक बार फिर मजाकिया रुख ले लिया था। जो बोलता है सही उसको उतार देते हैं यही, बाकी जाना नहीं कहीं। नाविक के दूसरी तरफ बैठी महिला अभी पानी की गहराई पूछना ही चाहती थी कि दूसरा नाविक बोल उठा, यहाँ पानी की गहराई है 350 फीट डीप। नीले काले संगमरमर के बीच रंग के भाई साहब की आवाज आई थी, झूठ पर झूठ बोले जा रहा है। समर को लगा कहीं ऐसी बातों से नाविक नाराज न हो जाए, लेकिन नाविक के चेहरे पर नाराजगी की बजाय वही हाजिर जवाबी चमकी थी। जिसे विश्वास नहीं उतर कर देख सकता है, आने की गारंटी 4 दिनों के बाद। यहाँ जाने वाला जाता है सिंगल और आता है डबल होकर। रूई के फाहे जैसे रंग वाली भाभी जी अपने पति की तरफ देखकर मुस्कुराई थी, मानो कह रही हो, देखा तुमसे ज्यादा सयाना है ये। पति की आंखें भी चिढ़ और शरारत के मिले जुले भाव के साथ चमकी थी। तो रह जा इसी के साथ, रोज नाव की सैर कराएगा, पत्नी की आंखों ने जैसे उसे मुंह चढ़ाया था। सोच लो। बाद में मत कहना कि हाँ। नाविक अपनी रॉ में था। सामने देखो गुलाब का फूल, नेचुरल टेम्पल देखो उसका सैंपल, बिल्कुल ओरिजिनल मंदिर लगता है। इसी के सामने राज कपूर ने एक फिल्म निकाली थी आवारा। दम भर चूधर मुंह फेरे ओ चंदा, मैं उनसे प्यार कर लूंगी, बातें हजार कर लूंगी। दूसरे नाविक ने जुगलबंदी जारी रखी थी। फिल्म हो गया 50 साल पुराना, राज कपूर और नरगिस ने गाया था गाना, अब दोनों ऊपर हो गए रवाना। तभी उस नाविक के सामने बैठी महिला ने नर्मदा का अंजूरी भर जल सामने की ओर उछाला था। शायद उस नाव में वो खुद को कुछ देर और नरगिस ही समझती रहती, यदि नाविक की बातों ने अचानक उसकी अल्हड़ कल्पना पर ब्रेक न लगा दिया होता। मैडम पानी में ज्यादा हाथ नहीं डालना। क्यों? हाथ गीला हो जाएगा। नाविक के इस शरारती संवाद ने एक बार फिर नाव के साथ साथ पूरी नर्मदा को हंसी से भिगो दिया था, और उस महिला ने एक शर्मीली खिलखिलाहट के साथ कहा था, धत। अब देखो मार्बल प्योर व्हाइट, एक ही साइड, दूध की सफेदी निर्मा से आए, रंगीन मार्बल खिल जाए। निर्मा यहाँ देख लो, सर्फ एक्सेल आगे दिखाता हूँ, एरियल नहीं दिखाऊंगा। नाविक के बगल में बैठे पुरुष के नाक और भौहों पर एक खास किस्म का बल पड़ा था, जैसे उसने उसकी बनियान से आती सोडे की महक पहचान ली हो और कहना चाहता हो, पहले खुद के कपड़े तो निर्मा से धुल ले, फिर सर्फ एक्सेल और एरियल की बातें करना। मिसेस गुप्ता की चिंता कुछ और थी। उन्होंने खुद के और डॉक्टर गुप्ता के कपड़े धोकर यूं ही होटल के कमरे के बाथरूम में रख छोड़े थे, आज शायद ही सूख पाए। ऐसे में कल सुबह नहाने के समय गीले तौलिये के कारण उनकी और डॉक्टर गुप्ता के बीच बकझक न हो जाए। ये देखो ऊंचा वाला पहाड़, इसे प्यार से देखना, इसका नाम है सुसाइड पॉइंट। कॉलेज के लड़के लड़कियां कभी पढ़ाई तो कभी प्यार मोहब्बत में जब हो जाते हैं फेल, यहाँ आकर होते हैं पास, फिर 4-5 दिनों में मिल जाती है लाश। जगह है खास। उसकी आवाज में अभी एक तंज जैसा था। समर सोचने लगा था उन पढ़ने वाले या कि हिम्मत हार जाने वाले उन लड़के लड़कियों के बारे में। जुगलबंदी जारी थी। कॉलेज वाले यहीं पर आते हैं, बाकी जो बीवी से परेशान है वो बॉर्डर पर धुआंधार जाते हैं। क्षण भर की चुप्पी के बाद नाविक ने नाव में एक और सवाल उछाला था, है कोई क्या? नाव में सवार कई लोगों ने अपनी अपनी पत्नी की तरफ चुप निगाहों से देखा था। क्षण भर को नाव में जैसे एक अनजान सी चुप्पी पसर गई थी। यात्रियों की चुप प्रतिक्रियाओं को देखते समझते पर इससे पूरी तरह बेपरवाह नाविकों ने अपनी कमेंट्री जारी रखी थी। कैमरा है तो चमका लो उसकी लाइट, नहीं तो बैठे रहो एकदम टाइट, यही है सर्फ एक्सेल की ब्राइट। सफेद संगमरमर को कैद करने की छटपटाहट में कई कैमरों की लाइट एक साथ चमचमा उठी थी। नाविकों के सामने वाले कोने से एक मर्दाना आवाज आई थी, यहाँ संगमरमर की कटाई भी होती है क्या? पहली बार नाविक के स्वर में नमकीन खनक की जगह एक भव्य मिश्रित उदासी थी। नहीं साहब, यहाँ मार्बल काटना मना है, यहाँ से 4 किलोमीटर दूर तक ही पत्थर काटे जाते हैं। नाविक की आंखों के नीचे का सांवलापन अचानक गहरा हो गया था। दूसरे नाविक ने कहा था, यदि यहाँ भी मार्बल काटे जाने लगे तो इस जगह को देखने कौन आएगा? उनके चेहरे की तांबई आभा पर जैसे झामे का रंग चढ़ गया था। समर के कैमरे ने महसूस किया कि उन नाविकों के चेहरे के बदलते रंग से नर्मदा का रंग कुछ और गाढ़ा हो गया था। तभी दूसरे नाविक ने दूर से इशारा किया, वो देखो शंकर भगवान की पिंडी, सफेद संगमरमर का शिवलिंग, 350 साल पहले इंदौर की महारानी अहिल्याबाई ने इसकी स्थापना की थी। प्रेम से बोलो जय भोलेनाथ की। पूरे नाव ने उसका साथ दिया था, जय। दोनों नाविकों की आंखें क्षण भर को किसी अनाम श्रद्धा से मुंद गई थी। उनकी मुदी आंखें जैसे थोड़ी देर पहले उसके मन में उगाए भय को दूर करने के लिए प्रार्थना कर रही थी। गुप्ता भाभी ने पूछा था, यहाँ रात में भी बोटिंग होती है क्या? हाँ, सिर्फ चांदनी रात में। दूसरा नाविक फिर शुरू हो गया था, चांदनी रात में फैमिली हो साथ में और कैमरा हाथ में। दूसरे नाविक ने तुक मिलाया था, यदि फैमिली नहीं हो तो पूरी बोतल हाथ में। चांदनी रात की बात सुनते ही समर की बिटिया, जो अब सतीश की गोद में बैठी हुई थी, पूछा था, अंकल अंकल, चांदनी रात क्या होती है? बेटा, चांदनी रात मतलब वो रात जिसमें आसमान में चांद चमकता है। रूम में? समर की आवाज चौंकी थी। वही चांद ना जो रात को हमारे रूम में चमकता है? हाँ बेटा, समर और छवि लगभग एक ही साथ बोल पड़े थे। और तारे भी? हाँ, छवि ने समर की आंखों में देखा था, मानो कह रही हो इस बार वो अपनी बिटिया को चांदनी रात जरूर दिखाएंगे, नहीं तो वो कमरे की छत पर चिपके चमचमाते चांद सितारों को ही चांदनी रात समझती रहेगी। बंदर कूदने तक जाकर लौटते हुए नाविक ने कहा था, वो देखो तीन चेहरे, इसी का नाम है ब्रह्मा विष्णु महेश। दूसरे ने तुकबंदी पूरी की थी, पानी में डूबे गणेश। यही शाहरुख खान ने अपनी फिल्म निकाली थी अशोका। रात का नशा अभी आंखों से गया नहीं। दूसरे नाविक ने पूरी की पूरी कोशिश की थी कि गीत का नशा उसकी आंखों में भी हो। शाहरुख की फिल्म की बात सुनते ही एक बार फिर कई कैमरे एक साथ चमक पड़े थे। बहुत देर से नाविकों को चुप देख रुई के फाहे के रंग वाली महिला ने कहा था, अरे भैया चुप क्यों हो गए, कुछ और तो बताओ। नाविक ने कहना शुरू किया था, वो देखो दो कलर के मार्बल, सफेद एंड व्हाइट, मार रहा है लाइट दोनों साइड। कुछ और सुनाने की फरमाइश करने वाली महिला ने तपाक से कहा था, अच्छा बेवकूफ बनाते हो, सफेद और व्हाइट एक ही तो हुआ ना। मैडम, वो तो मैंने जानबूझकर कहा, सारे पॉइंट खत्म हो गए। अब कुछ कल्पना भी तो कर लो। नाविक की कल्पनाशील वाकपटुता से फैली हंसी अभी थमी भी न थी कि नाव किनारे पर आ लगी थी। सवारियों के नाव से उतरते ही नाविकों ने दूसरे खेप के लिए पुकार लगाने शुरू कर दी थी। ऊंचाई से कूदने वाले बच्चे अब नए सैलानियों के आगे पीछे घूम रहे थे। डॉक्टर गुप्ता अपनी हैंडी कैम से अब भी वीडियो बनाने में व्यस्त थे। कैमरे के जूम से उन्होंने देखा, एक लड़के ने लगभग 50 फीट की ऊंचाई से नर्मदा में छलांग लगा दी थी। रजत वर्णी धूप धीरे धीरे पीत वर्णी होने लगी थी। पीली रोशनी में चमकते मार्बल को देख डॉक्टर गुप्ता को अपने 7 बेडरूम वाले बड़े से घर की याद हो आई, जिसके फर्श उन्होंने कभी बड़े शौक से मकराना मार्बल की बनवाई थी। बाथ टब भी मार्बल का ही, पर रोहित के अमेरिका चले जाने के बाद वो घर जैसे उन्हें काटने दौड़ता है। धूप की सुनहरी रोशनी में चमकता सफेद संगमरमर जैसे अचानक ही उनके लिए काले या गाढ़े नीले रंग का हो गया था। नाव फिर से किनारा छोड़ चुकी थी। नाविकों के चेहरे का कच्चा सांवलापन एक बार फिर नीले और काले मार्बल की परछाई के साथ मिलकर और गाढ़ा हो रहा था। राकेश बिहारी की कहानी किनारे से दूर।
कहानियों के वाचन का ब्लॉग कॉफी हाउस, URL kathaa-paath.blogspot.in।